खुदावंद में आप सबको आज इस दिन में खुश आमदीद कहा जाता है, सलाम पेश किया जाता है, जिसका मतलब है कि खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा खिदमत के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि जिस घर में जाना, जिससे भी मुलाकात करना, उन पर सलामती भेजना। वहीं से हमने ये लफ्ज़ जो इब्तदाई कलीसियाओं ने चुना, जिसे कहते हैं कि सलाम जी या सलाम कहते हैं, यानी कि खुदा की सलामती, खुदा का इत्मीनान, खुदा जो जिस पर हम उम्मीद रखते हैं, उसकी बरकत आप सबके साथ हो। इसीलिए हम सलाम एक दूसरे को कहते हैं। हम इस दौर में बुलंद आवाज़ से कह सकते हैं, लेकिन उस दौर में, इब्तदाई दौर की बात कर रहा हूँ, जब कलीसिया वजूद में आ रही थी, जब शागिर्दों ने मनादी करना शुरू की, जब शागिर्दों ने मौत का, सताए जाने का, घरों से बेघर होने का सामना किया, तो लोग बहुत ज़्यादा मुखालफत में थे, तो उन्होंने एक निशान चुना हुआ था एक दूसरे को सलाम कहने के लिए, एक दूसरे की पहचान के लिए। वो निशान क्या था? मछली का उन्होंने नक्श चुना हुआ था। जब वो मिलते थे तो वो ज़मीन पर उस मछली को बना देते थे, जिससे पता चल जाता था कि ये भाई मसीही है, ये खुदा की सलामती और खुदा को और उसके बेटे को जानता है। क्योंकि उस दौर में जब किसी को पता चलता था कि ये मसीही है, तो उसे कत्ल किया जाता था, उसे मारा जाता था, उसे सताया जाता था। सो आए मेरे साथ इस हवाला को पढ़ें, रोमियो 15वां बाप उसकी 4 आयत। इससे पहले के कलाम का हिस्सा पढ़ें, आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदावन खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस पैगाम के लिए। हम सबको हिकमत और दनाई दे, ताकि जो कुछ भी सीखें हम सब की तरबियत और नसीहत के लिए हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आवाज़ नहीं आई। हालेलुया। खुदावन की हमद हो। 15 बाप उसकी 4 आयत। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल जब रोमियों की कलीसिया को, रोमी यानी के जो रोम शहर में रहते थे, रोम शहर में जो सबसे बड़े तादाद थी, उन लोगों की थी जो बुत परस्ती में, जो तरह तरह के देवताओं की इबादत करते थे, इस मुल्क में क्या रहते थे? वो लोग रहते थे जिसे यूनानी कहा गया है। यूनानी हिकमत के लिहाज से, दवाइयों के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, उनके बहुत से मुख्तलिफ खुदा थे, देवता और देवियां थे। और पालूस रसूल उनको इस बात के बारे में सिखा रहा है, जब उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया रोम शहर में, जब कलीसिया कायम हुई, जब ईमानदार इकट्ठे हुए, जब पालूस की मनादी के बायस बहुत से मसीह का बदन बने, तो वो कहता है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं। जैसे वो उनको कहता है कि हर वो बात खुदा के कलाम में जो लिखी गई है, हर एक कहानी, हर एक वाकया, हर एक बुरी मुश्किल, हर तरह की आफतें इसीलिए लिखी गई हैं कि तुम क्या करना सीख जाओ? सब्र करना, सब्र करना और मसीह की उस तसल्ली को हासिल करो। आपको याद होगा, यीशु मसीह ने ज़मीन से फारग होने से पहले, आसमान पर जाने से पहले अपने शिगिर्दों को क्या कहा था? कि मैं अपना रूह भेजूंगा, वो तुम्हें क्या देगा? इत्मीनान देगा, तसल्ली देगा, वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। और बहुत से वाक्या हम देखते हैं, जब यीशु मसीह मर गया, दफनाया गया, मुर्दों में से जी उठा, और ज़मीन पर तकरीबन 40 दिन तक यीशु मसीह अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शिगिर्दों पर जाहिर होता रहा, और शिगिर्दों को वो बातें याद आती रहीं कि खुदावन ने कहा था, खुदावन ने ये कहा था, और उसके बाद भी उनको ये बातें याद आती रहीं। किस लिए? ताकि उनका सब्र बढ़े, ताकि उनकी तसल्ली बढ़े। सो हमने कल अय्यूब की जिंदगी के बारे में देखा था उसकी उम्मीद, उसका सब्र। आज हम देखेंगे कि ना कि सिर्फ अच्छे हालात ही हमारे लिए लिखे गए हैं, बल्कि बुरे हालात भी हमारे लिए लिखे गए हैं ताकि हम उम्मीद रख सकें, ताकि हम कायम रह सकें, ताकि इस उम्मीद को जो हमारे अंदर है लोग देख सकें। क्योंकि अगर हमारी उम्मीद लोगों पर जाहिर नहीं होगी, वो किस तरह पूछेगा कि आपकी उम्मीद क्या है। अगर किसी को पता ही नहीं कि हम कौन हैं, तो वो किस तरह कह सकता है कि आपका ईमान क्या है। इसलिए मेरे साथ इस हवाला को देखें। पहला करंथियों उसका 10वां बाब, यहां पर हम देखते हैं पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को, जो कलीसिया भी बुत परस्ती में और तरह तरह के खुदाओं की इबादत में फंसी हुई थी। ये इलाका रोम के शहर के इर्द गिर्द था। करंथियों का इलाका बहुत बड़ी बंदरगाह थी। बंदरगाह से मुराद मिसाल के तौर पर जैसे हमारे शहर में मज्जों की बहुत बड़ी मंडी है, मंडी है, और वो मशहूर है कि आरफ वाला की मंडी में जो मज्जों की बोली लगती है या मज्जें बिकती हैं वो बहुत मशहूर हैं कारोबारी लिहाज से। इसी तरह करंथस शहर की जो बंदरगाह थी, जो हद थी, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, कारोबारी लिहाज से मशहूर थी। और यहाँ पर वो उन ईमानदारों को सिखाता और कहता है, ऐ भाइयों, पहली आयत, मैं तुम्हारा इससे वाकिफ रहना नहीं चाहता। ऐ भाइयों, तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सभी ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ये वाक्या किस लिए लिखा गया है? ताकि आज हम भी सीख सकें कि खुदा बेशक हर जगह, खुदा बेशक वादों में सच्चा है। और क्या हुआ कि यीशु मसीह अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन वो उनके साथ साथ चलता रहा, वो उनकी रहनुमाई करता रहा, वो उनके आगे पीछे ऊपर रहा, वो दिन में उनके साथ बादल की सूरत में चलता रहा, वो रात में आग के सैतून की तरह उनके साथ चलता रहा, और दिन के हर एक लम्हा में वो उनके साथ रहा, और ना के साथ रहा बल्कि उनकी मुश्किलात में, उनकी बियाबानी के उस सफ़र में, बियाबान के उन सफ़र में उन सब के साथ रहा। और बाइबल यहाँ पर बताती है, हमें सिखाती है कि जब वो बियाबान में थे, उनके पैरों पर क्या सोजिश ना आई, यानी कि उनके पैर फूल नहीं गए कि वो सफ़र कर रहे थे उनके पैर फूल गए, नहीं, उनके कपड़े मैले नहीं हुए, कपड़े फटे नहीं। उनकी बहुत सी ऐसी अजीब उनकी बातें उनकी ज़िंदगी में हुई जो बयान से बाहर है, और कोई नहीं कर सकता सवाए आसमान के खुदा के। उनके लिए खुदा ने आसमान से मन बरसाया, चट्टानों से पानी जारी कर दिया। इसलिए आगे हम देखते हैं सातवीं आयत से पढ़ूंगा, और तुम बुत प्रस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। पालूस रसूल यहाँ पर क्रंथस के ईमानदारों को कहता है कि बुतपरस्ती की तरफ ना जाओ, क्योंकि जिस तरह माजी में हुआ अब भी हो सकता है। तुम बुतपरस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम कारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 33,000 मर गए। वो उनको नसीहत करता है कि ये वाक्या हुआ, इससे तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, और हम खुदा की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। और यहाँ पर गौर करने की बात है, 11वीं आयत, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई, यानी कि ये बातें उन पर इसलिए वाकया हुई ताकि वो इससे सीखें, इससे गवाही हो, इससे नसीहत हो, इससे जाने कि जो कोई भी जिंदा खुदा की तरफ अपना मुंह फेरता है वो बरकत पाता है, और जो कोई भी खुदावंद की तरफ अपना पीछा करता है उसे इनकार करता है, खुदावंद ऐसा पसंद नहीं करता, उनको सजा देता है। और ऐसा ही हुआ उस वक्त में। और लिखा है, और हम अखीर जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। किस लिए लिखी गई? हमारी नसीहत के लिए। अगर आज आप सताए जा रहे हैं, अगर आज आप किसी तरह की मुश्किल या परेशानी, जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं आपके ईमान के बायस, आपको सताते हैं आपके ईमान के बायस, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं वड़ियां दुआवां करने वाली आ गई, बड़े दुआवां करने वाले आ गए, सुबह नूं भी इतवार नूं भी खुदा उनको बदला देगा, खुदा उनको जवाब देगा। इसलिए आप इन बातों के बायस, तोहमतों के बायस, दूसरी हौसला तोड़ने वाली बातों के बायस खुदा की इबादत करना बंद ना करें, और ना ही हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो ना मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, तुम्हें भी कहेंगे। और वो लोग कौन थे? उस वक्त के लोग जो बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे, जिन्हें फकी फरीसी कहा गया है, जिन्हें रब्बी कहा गया है, ये वो लोग थे जिन्होंने कलाम को लिखा, जिन्होंने शरीयत को लिखा, और जिनमें से बहुत से लोग थे जो बयान करते थे, लेकिन उन्होंने मसीह खुदावंद को क्या किया? रद्द किया। इंतज़ार करते रहे कि खुदावंद आएगा, लेकिन जब वो आया तो उसे पहचाना तक नहीं। इसी तरह आज के दौर में भी बहुत दफ़ा गैर कौमें कम हमारी दुश्मन होती है, हम आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? हमारे अपने ही हमें क्या कहते हैं, लामे दे के मार देंदे, इदा ही लाला जी। इसलिए सानू हौसला हारन की जरूरत नहीं, ये साड़ी नसीहत लिए लिखिया गई गल्लां, साड़ी तरबियत लिए लिखिया गई गल्लां कि की क्या गया वा। और ये बातें उन पर अब इबरत के लिए वाकया हुई, और हम अखीर जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। हम अखीर जमाने वालों के नसीहत के वास्ते ये लिखी गई हैं। अखीर ज़माने के लोग जो आज हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं, यीशु मसीह आने वाला है, उससे पहले आप हर तरह की मुसीबत का सामना करेंगे। अगर किसी ने आपको पहले कोई ऐसा दलासा दिया है या क्या किया है, खुश करने के लिए कहा है कि मसीही ज़िंदगी खुशी का नाम है, मसीही ज़िंदगी में खुशहाली होगी, मसीही ज़िंदगी में दुख या मुसीबत या परेशानी या बीमारी नहीं होगी, तो उसने आपसे झूठ बोला है, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा था कि शिगिर्दो मेरे पीछे चलो तुम बहुत खुशहाल होगे। नहीं, यीशु मसीह ने पहली ही बात कही थी, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे पीछे हो ले। यानी कि मुश्किलों का ये सफ़र है, हाँ, लेकिन पूरी दलेरी के साथ, यकीन के साथ कहता हूँ, तो जब आप इस ज़मीन से फारग होंगे, इस ज़मीन से रुखसत होंगे, इस ज़मीन पर से ख़त्म हो जाएंगे बदनी तौर पर, उस रूहानी आलम में कोई भी दुख तकलीफ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये यीशु मसीह ने वादा किया है कि आसमान पर ना दुख ना तकलीफ ना मुसीबत होगी, और ज़मीन पर भी उस वक्त दुख और मुसीबत और तकलीफ और आंसू और बदी और लड़ाई और झगड़ा और चुगलियां और बेईमानी की जैसी बातें नहीं होगी जब यीशु मसीह अपनी बादशाही कायम करेगा। इसलिए हमें हर रोज़ अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि हौसला ना हारो बेटा, हौसला ना हारो बेटी। माओं को, बहनों को एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, यानी कि एक दूसरे की को सब्र देने की ज़रूरत है, तसल्ली करने की ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ पर इस ज़मीन पर मौजूद हैं, इसलिए हमें अबलीस शैतान को मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारी उम्मीद जो खुदा पर है उसे तोड़े। अगर किसी दुख में है तो दलेरी से कहें कि खुदावन तेरी पाक मर्जी पूरी हो। सबसे बड़ी दो दुआएं हैं जो यीशु मसीह ने जब वो ज़मीन पर था की, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, और दूसरी खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो। हम भी ये कह सकते हैं अपने तमाम हालात में, और आप इसका अजर ना कि सिर्फ इस ज़मीन पर बल्कि आने वाले जहां में देखेंगे कि कितने मुबारक होंगे अगर हम इन दो दुआओं को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें। नुकसान हो जाए, खुदा बाप तेरी मर्ज़ी पूरी हो, जो भी भला हो काम, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। ये बातें हमारी नसीहत के लिए लिखी गई, यीशु मसीह की ज़िंदगी के वाक़यात इसीलिए लिखे गए थे ताकि हम जानें कि ये बात यीशु मसीह ने कही थी। अपने तमाम मुश्किलात को सामने रखते हुए उसने कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। और जब भी लोगों ने आजमाना चाहा तो खुदा ने मौजज़ा किया, तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप तेरा शुक्र हो। हमें भी जब भी खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करे, खुदा बाप तेरा शुक्र हो। और जब भी मुसीबत आए तो कहने की ज़रूरत है, खुदा बाप तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आए हम दुआ करें। खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं जो बातें हमारी तरबियत और नसीहत के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम भी तुझ में मजबूत और कायम और भरोसा तुझ पर रखें, और हमें यह दुआ करना सिखा कि तेरी पाक मर्ज़ी पूरी हो। आज के दिन में तमाम कलीसिया के साथ हो, बड़े दिन के तमाम प्रोग्रामों का जो इश्तियार है, और जिन जिन घरों में इबादत का इंतज़ाम किया है, उन सब घरों के लिए खुदावन तुझसे बरकत और हिकमत और दनाई और खुदाऊँ खुदा हर तरह के माली इंतज़ाम की दुआ करते हैं। सबको सबकी ज़रूरियात पूरी कर, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।